بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
زہرہ زیدی اور ساتھی ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں سلام پرستت کرتے ہیں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت کرمانک 102 سے 104 تک کی تلاوت کر کے آج کے کارکرم کی شوبھا بڑھائی ہے قاری محمد صدیق منشاوی نے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔
صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، ایشور سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، اور مسلم رہتے ہوئے ہی مرنا، اور تم سب مل کر ایشور کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور بکھرو نہیں، اور اپنے اوپر ایشور کی اس وبھوتی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے شترو تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پریم جگایا، تو تم اس کی وبھوتی کی چھایا میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، جیسا کہ تم نرک کی کگار پر تھے اور ایشور نے تمہیں اس سے مکتی دلائی۔ ایشور اپنی نشانیوں کو اس پرکار تمہارے لیے اسپشٹ روپ سے ورنت کرتا ہے کہ شاید تم لوگ مارگ درشت ہو جاؤ، اور تم مسلمانوں کے بیچ ایک ایسا گٹ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا نمنترن دے، اچھے کاریوں کی اور آمنترت کرے اور برائیوں سے روکے، اور ایسے ہی لوگ سفلتا پراپت کرنے والے ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنت ایران کی آواز۔ شوتو، ہمارے آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا نوٹ کر لیں۔ صدا کی بھانتی آپ سب سے پہلے دیش ودیش کے سماچار سنیں گے، اس کے پشچات راج نیتک چرچا کا دینک کاریکرم ہوگا، اس کے پشچات آپ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے جنم دیوس کے شبھ اوسر پر ہمارا وشیش کاریکرم سنیں گے، اور سبھا کا انتم اور ساپتاہک کاریکرم ہوگا اچھی عادتیں۔ شروتاؤ، یہ تو تھی ہماری آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا، اور اب آپ کچھ ہی کھڑوں میں ریڈیو تہران سے سماچار سنیں گے۔ اور اب آپ مریم مہدادی اور محمد مہدی سے سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھ سماچاروں کا سارانش۔ سپاہی پاسداران کے کمانڈر نے کہا کہ دشمن کیول طاقت کی بھاشا سمجھتا ہے اور سپر سونک میزائلوں میں وستار کیا جائے گا۔ جرمن چانسلر دو دیوسی یاترا پر بھارت پہنچے، پردھان منتری مودی سے ہوئی بات چیت۔ سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ نفرت کی آگ بھڑکائی اور وپکش کی آواز دبائی جا رہی ہے۔ جان بولٹن نے کہا ہے کہ امریکہ ناٹو سے نکل جائے گا۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
سپاہی پاسداران آئی آر جی سی کے کمانڈر نے کہا ہے کہ کروز میزائل زمین کی سطح پر پکشی کی بھانتی اڑتے ہیں اور ان کی گتی ادھک نہیں ہوتی ہے، البتہ سپر سونک میزائلوں کو وستریت کیا جائے گا۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ دلوں اور ذہنوں پر قبضہ کر لینا امریکیوں کا ایک اسٹریٹجک سپنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ امریکی رن چھیتر میں پراست ہو چکے ہیں، اس لیے وہ اس چھیتر میں پرویشٹ ہوئے، اور انہوں نے ہمارے خلاف اپنی سمست سمبھاونا کا پریوگ کیا، ان میں سب سے پہلا صدام اور اس کے گھٹک تھے، اور اس کے بعد ہمیں نیانتیت کرنے کے لیے اسلامی دیشوں میں تکفیریوں کا پوشن کیا، اور اسے بھی بڑے سردار کے پریاسوں و سنگھرشوں سے نشکریہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے آرتھک یدھ آرمبھ کر دیا۔ اسی پرکار جنرل سلامی نے کہا کہ ہم اتہاس کی رچنا کر رہے ہیں، اتہاس کسی ایک سمے میں استھر واستوکتا نہیں بلکہ جاری سلسلہ ہے، اور اگر ہر راشٹر سمے پر عمل نہیں کرے گا تو اس کا انت ہو سکتا ہے۔ جنرل سلامی نے کہا کہ دشمن طاقت کی بھاشا کے علاوہ کوئی انیہ بھاشا نہیں سمجھتا، وہ ترک سنگت باتیں نہیں سمجھتا پرنتو طاقت کی بھاشا سمجھتا ہے۔ سپاہی پاسداران کے کمانڈر نے کہا کہ آج ہماری طاقت دیکھیے، آج سب سے سرکشت وہ جہاز ہے جس پر ایرانی جھنڈا لہرا رہا ہو، یہ یعنی طاقت۔ آپ देखिए कि अमेरिका का पूर्व विदेश मंत्री कहता है कि जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद से वो डरावना सपना देख रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी शक्ति का चिन्ह है।
ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रमुख ने देश में एक नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की घोषणा की है। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूरी तरह से ईरानी विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बिजली संयंत्र दक्षिण पश्चिमी ईरान के खुजिस्तान प्रांत में कारून परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नाम से बनाया जाएगा। ईरान के परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रमुख ने कहा कि कारून परमाणु ऊर्जा संयंत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत किया गया है। परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रमुख ने कहा कि कारून परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पूरी तरह से आंतरिक संसाधनों और ऊर्जा का उपयोग करके विकसित किया जाएगा और इस प्रकार ईरान को विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं होगी। मोहम्मद इस्लामी ने जोर देकर कहा है कि ईरान उत्पादन प्रक्रिया में संभावित अस्पष्टताओं को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि आईएईए ने पश्चिमी देशों और ज़ायनी शासन के दबाव में ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों को बारम्बार गलत तरीके से पेश किया है। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रमुख ने कहा कि तेहरान ने आईएईए के साथ हमेशा सकारात्मक सहयोग किया है और राजनीतिक दबाव से यह सहयोग प्रभावित नहीं होना चाहिए।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। जर्मनी और भारत के बीच संबंधों में कई क्षेत्र में पिछले कुछ सालों के दौरान तेजी आई है। ओलाफ शोल्ज रविवार की सुबह बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे, जहां से वे शाम 5:30 बजे प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद कहा कि मैं अपने मित्र ओलाफ शोल्ज और उनके प्रतिनिधियों का भारत में स्वागत करता हूं। चांसलर ओलाफ कई वर्षों के बाद भारत का दौरा कर रहे हैं। आज की बैठक में हमने सभी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान का लंबा इतिहास रहा है। विश्व की दो बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ता सहयोग दोनों देशों की जनता के लिए लाभकारी तो है और आज ही क्षमा कीजिएगा विश्व की दो बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ता सहयोग दोनों देशों की जनता के लिए लाभकारी तो है ही, आज के तनावग्रस्त विश्व में इससे एक सकारात्मक संदेश भी जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जर्मनी यूरोप में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर होने के साथ भारत में निवेश का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इस अवसर पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भी कहा कि भारत ने काफी तरक्की की है और ये दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। पिछली बार जब मैंने भारत का दौरा किया था तब से बहुत कुछ बदल गया है। भारत वास्तव में विकास कर रहा है। मेरे और पीएम मोदी के विचार समान हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष भारत के पास G20 की अध्यक्षता है।
सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नफरत की आग भड़का रही है तथा अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों और महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 3 दिवसीय महाधिवेशन चल रहा है। इस महाधिवेशन में कांग्रेस के समस्त बड़े नेता भाग ले रहे हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महाधिवेशन में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और विपक्ष की आवाज दबाने के साथ नफरत की आग भड़काई जा रही है। सोनिया गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा आरएसएस की सरकार ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है तथा विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने अध्यक्ष के तौर पर अपनी पारी का उल्लेख करते हुए कहा कि ये मेरे लिए सम्मान की बात थी कि मैंने वर्ष 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला। 25 वर्षों में पार्टी ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की और निराशा भी हाथ लगी।
भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रीवा और सतना जिलों की सीमा पर एक ट्रक ने सड़क पर खड़ी 3 बसों को टक्कर मार दी, जिससे 14 लोगों की मौत हो गई और 60 अन्य घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि यह हादसा शुक्रवार रात करीब 9 बजे बरखड़ा गांव के पास सुरंग के बाहर हुआ और बसों में सवार लोग सतना शहर में कोल महाकुंभ से लौट रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरिवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद संवाददाताओं से कहा कि सीमेंट लदा ट्रक टायर फटने के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी तीन बसों से टकरा गया। टक्कर लगने से एक बस पलट गई और दूसरी बस दूसरी तरफ पलट गई, जिसके कारण यात्रियों को चोटें आईं। चौहान ने इस घटना को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर बीमारों को इलाज के लिए विमान से रीवा से बाहर ले जाया जाएगा। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया।
अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के पूर्व सलाहकार ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका का राष्ट्रपति बने तो वो अमेरिका को नाटो से निकाल लेंगे। जॉन बोल्टन ने समाचार पत्र वाशिंगटन पोस्ट के साथ साक्षात्कारों में कहा कि अगर ट्रंप एक बार अमेरिका और राष्ट्रपति बने तो मैं समझता हूं कि अमेरिका नाटो से निकल जाएगा। ट्रंप प्रशासन से निकाले जाने के बाद बोल्टन उनके मुखर विरोधी और आलोचक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी का ट्रंप के प्रति कटिबद्ध होना पूरे इतिहास में एक पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक आत्महत्या है। बोल्टन ने पिछले महीने ऐलान किया था कि वर्ष 1924 में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में उम्मीदवार बनना चाहते हैं ताकि ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनने से रोक सकें।
अमेरिका का कहना है कि भारत के रूस के साथ विशेष संबंध हैं और वो मॉस्को के साथ अपने संबंध को खत्म नहीं करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय में दक्षिणी और मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू का कहना है कि भारत के रूस के साथ विशेष संबंध हैं और नई दिल्ली मॉस्को के साथ अपने संबंधों को खत्म नहीं करने वाला है। उनका कहना था कि अमेरिका को उम्मीद है कि भारत अपने इन संबंधों का उपयोग यूक्रेन जंग को खत्म करने की दिशा में प्रयोग करेगा।
रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख ने एक नए विश्व युद्ध को रोकने के लिए यूक्रेन में रूसी सैन्य लक्ष्यों की पूर्ति को आवश्यक बताया है। दोनबास क्षेत्र में रूसी सैन्य अभियान के एक वर्ष पूरा होने पर रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि यूक्रेन युद्ध में जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि रूसी सीमाओं पर खतरों के खात्मे पर जोर देते हुए कहा कि यूक्रेन युद्ध या तो हमारी सफलता या समझौते के साथ खत्म होगा। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो हमें अपनी सीमाओं से खतरों को दूर करना होगा और जरूरत पड़ने पर हम पोलैंड की सीमाओं तक भी जा सकते हैं।
जर्मन मीडिया ने खबर दी है कि रूस एक चीनी कंपनी से 100 ड्रोन खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। जर्मन समाचार पत्र एजेंसी स्पिगल ने कहा है कि ये ड्रोन रूस को अप्रैल तक डिलीवर किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि रूस ड्रोन निर्माता कंपनी बिंगो जियान एविस्टिन टेक्नोलॉजी के साथ बातचीत कर रहा है। सैन्य विशेषज्ञों ने कहा है कि रूसी कंपनी के ZT-180 ड्रोन खरीदना चाहता है। जानकारों का कहना है कि ये विमान 35-50 किलो युद्धक गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा बिंगो कंपनी रूस को प्रतिमाह लगभग 100 ड्रोन के निर्माण से संबंधित भागों और सूचनाओं की आपूर्ति करेगी।
तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप आने से अब तक 40,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद से अब तक तुर्की में कई बार भूकंप आ चुका है, जिससे स्थानीय लोग डर डर कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओं, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम बात करेंगे यूक्रेन युद्ध रोकने के संदर्भ में चीन की तरफ से आने वाले प्रस्ताव के बारे में। राजनीतिक चर्चा में हम एक नज़र अफ्रीकी संघ और इसराइल के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति पर भी डालेंगे। भारत नियंत्रित कश्मीर में स्थानीय लोगों ने सरकार की ओर से लगाए गए टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं, ये विषय भी कार्यक्रम में शामिल रहेगा। तो चर्चा के विषय यही हैं। आरंभ करते हैं यूक्रेन युद्ध के बारे में चीन के प्रस्ताव से। चीन ने यूक्रेन युद्ध रोकने के संदर्भ में एक प्रस्ताव पेश किया है जिसका अमेरिका ने विरोध किया, वहीं रूस ने इसका स्वागत किया है। जायजा ले रहे हैं कायम रिज़वी।
यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के संबंध में चीन के प्रस्ताव को अमेरिका ने निरस्त कर दिया है। यूक्रेन संकट को समाप्त करने के उद्देश्य से पेश किए जाने वाले चीन के प्रस्ताव को अमेरिका ने यह कहते हुए रद्द किया है कि यह केवल रूस के हित में है। एबीसी टीवी चैनल से बात करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिससे खुश होकर पुतिन तालियां बजा रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि चीन के इस प्रस्ताव में कोई भी चीज ऐसी नहीं दिखाई दे रही है जो रूस के अतिरिक्त किसी दूसरे पक्ष के हित में हो। यूक्रेन युद्ध की समाप्ति को लेकर चीन की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव का अमरीका द्वारा विरोध इस अर्थ में है कि वो फिलहाल इस युद्ध की समाप्ति के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। बाइडेन प्रशासन के अनुसार यूक्रेन युद्ध में रूस की विजय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉस्को के सशक्त होने के अर्थ में है, जो पश्चिम में सुरक्षा, सैन्य और राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ देगी। दूसरी बात यह है कि अमरीकी अधिकारी ये मानते हैं कि रूस पर अधिक दबाव बनाकर उसको कमजोर करके जहां पर मॉस्को को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वहीं पर विश्व में बहुध्रुवीय व्यवस्था को अस्तित्व में आने से भी रोका जा सकता है। यही कारण है कि पश्चिम ने यह दृढ़ संकल्प कर लिया है कि यूक्रेन युद्ध में रूस को जीतने से रोका जाए। मॉस्को का मानना है कि पश्चिम यूक्रेन युद्ध से रूस को कमजोर करके उसके टुकड़े करना चाहता है। ऐसे में लगता है कि फिलहाल यूक्रेन संकट समाप्त होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ पश्चिम, विशेषकर अमेरिका की ओर से यूक्रेन के लिए व्यापक स्तर पर हथियारों की आपूर्ति ये बताती है कि वे यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि यूक्रेन युद्ध रुकवाने के उद्देश्य से चीन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का रूस ने समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि मॉस्को बीजिंग की इस बात से सहमत है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की परिधि से अलग किसी भी प्रकार की सीमितता गैर कानूनी है। इस प्रस्ताव के बारे में महत्वपूर्ण बात यूक्रेन के विदेश मंत्री का अस्पष्ट दृष्टिकोण है। उन्होंने चीन के प्रस्ताव को रोचक बताते हुए कहा है कि इसमें जो सुझाव दिए गए हैं हम उनसे सहमत हैं, किंतु इसके एक प्रस्ताव से हम असहमत हैं। दिमित्रो कोल्बा ने कहा है कि हम रूस से प्रतिबंध हटाए जाने से पूरी तरह से असहमत हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ा हथकंडा है। इससे लगता है कि रूस पर दबाव डालने के मामले में यूक्रेन भी अमरीकी नीतियों से सहमत है। शुक्रवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन संकट के समाधान के उद्देश्य से 12 सूत्रीय एक योजना पेश की थी। विशेष बात यह है कि यूक्रेन संकट के संदर्भ में चीन ने हमेशा स्वयं को तटस्थ दिखाने की कोशिश की है, किंतु ये भी कहा जा रहा है कि रूस के साथ संबंधों के विस्तार में चीन के निकट कोई भी सीमितता नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त पश्चिम की ओर से यूक्रेन भेजे जाने वाले हथियार को चीन आग में घी डालने के रूप में देखता है।
अफ्रीकी संघ की शिखर बैठक से इसराइली प्रतिनिधि मंडल को अपमानित करके बाहर निकाला गया। इसके बाद से अफ्रीकी संघ के साथ इसराइल के संबंधों का मुद्दा चर्चा में है। जायजा पेश कर रहे हैं अख्तर अब्बास।
अफ्रीकी संघ के 55 सदस्यों ने संघ के सदस्यों से ज़ायनी शासन के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने और इसे एक साम्राज्यवादी शक्ति करार देने की मांग की है। इस संबंध में फिलिस्तीनियों के साथ ज़ायनी शासन के दुर्व्यवहार के कारण दक्षिणी अफ्रीका के सांसद इसराइल के साथ राजनयिक संबंधों के स्तर को कम कर सकते हैं। अफ्रीकी संघ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सदस्य देशों को एक गैर कानूनी और अवैध शासन के रूप में ज़ायनी शासन को मान्यता नहीं देनी चाहिए जिसने अवैध अधिकृत पूर्वी बैतुल मुकद्दस सहित फिलिस्तीन और अरब क्षेत्रों में एक साम्राज्यवादी और नस्ल भेदी व्यवस्था बना रखी है। यह अपील अफ्रीकी संघ के शिखर सम्मेलन से ज़ायनी प्रतिनिधिमंडल के निष्कासन के बाद की गई है। पिछले हफ्ते अफ्रीकी संघ के शिखर सम्मेलन के सुरक्षा अधिकारियों ने शिखर सम्मेलन हॉल से दूसरे लोगों के प्रवेश कार्ड का उपयोग करने वाले इसराइली प्रतिनिधिमंडल को निकाल दिया था। इसराइल का ये प्रतिनिधिमंडल तेल अवीव से अदीस अबाबा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आया था। ज़ायनी शासन के प्रतिनिधिमंडल का निष्कासन ये साबित करता है कि ये शासन न केवल दावा नहीं कर सकता कि वो अफ्रीकी संघ का पर्यवेक्षक सदस्य बनने में सफल रहा, बल्कि इसके विपरीत इस प्रतिनिधिमंडल को निष्कासित करने की प्रक्रिया से पता चलता है कि अतिग्रहणकारी ज़ायनी शासन को अफ्रीकी संघ द्वारा खारिज कर दिया गया। ज़ायनी शासन ने इस कार्रवाई की निंदा की है और दक्षिणी अफ्रीका और अल्जीरिया पर राजनयिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया है। अफ्रीकी संघ ने घोषणा की है कि वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता है कि ज़ायनी शासन ने अपने प्रतिनिधिमंडल के निष्कासन को चौंकाने वाला कदम करार दिया है। इससे पहले अदीस अबाबा में अफ्रीकी संघ की बैठक से ज़ायनी प्रतिनिधिमंडल के निष्कासन के बाद इस संघ के आयोग ने बैठक में भाग लेने के लिए ज़ायनी शासन के प्रतिनिधि के किसी भी निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। अफ्रीकी संघ आयोग के प्रमुख मूसा मोहम्मद ने कहा कि पिछले साल अफ्रीकी संघ के नेताओं की बैठक ने इस संघ में एक पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में इसराइल की स्थिति को खत्म कर दिया और इस मुद्दे से निपटने के लिए देशों के प्रमुखों की एक समिति बनाई गई है। उन्होंने बल दिया कि इसका मतलब यह है कि जब तक ये समिति इस पर चर्चा करती है स्थिति लंबित रहेगी, लेकिन हमने अपनी बैठक में भाग लेने के लिए ज़ायनी शासन के किसी भी राजनयिक को आमंत्रित नहीं किया है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सईद सादिक कहते हैं कि अफ्रीकी संघ के कुछ सदस्य ज़ायनी शासन के साथ द्विपक्षीय संबंध होने के बावजूद उसके अतिग्रहण के खिलाफ हैं। वे फिलिस्तीनियों की हत्या के खिलाफ हैं। ज़ायनी शासन लंबे समय से फिलिस्तीनियों को मार रहा है। यद्यपि ज़ायनी शासन के सदस्यता पर एक पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में सहमति हुई थी, लेकिन अल्जीरिया और दक्षिण अफ्रीका ने, जो नस्लवाद से पीड़ित हैं, इस मुद्दे पर कड़ी आपत्ति जताई और वो इसको अपने लिए अपमान समझते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
भारत नियंत्रित कश्मीर में स्थानीय प्रशासन ने नए टैक्स लगाए हैं जिस पर लोगों ने भारी विरोध जताया है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
श्रीनगर में आज लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन किए और भारत सरकार पर बल दिया कि वो अपना ये निर्णय फौरी तौर पर वापस लें। श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में बड़ी संख्या में लोगों ने इन टैक्सों के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त करने के समय एक वर्ष तक पूरा जम्मू कश्मीर लॉकडाउन में था और उसके बाद कोविड ने और स्थिति को तबाह बर्बाद कर दिया और जम्मू कश्मीर के नागरिक इस स्थिति में नहीं है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें ये पता नहीं चल रहा है कि आए दिवस हम पर नए नए कानून लागू किए जा रहे हैं। लोगों ने मौजूदा प्रशासन पर बल दिया कि वो अपने निर्णय वापस लें। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स हम पर लगाना इस समय उचित नहीं है। उन्होंने कहा,
टैक्स क्या कश्मीर کسی بھی طریقے کا ٹیکس دینے کے اس ٹائم مطلب ہماری کنڈیشن ہے وہ ٹیکس دینے کی. پچھلے پانچ اگست 2019 کے بعد ہی ان لوگوں نے یہاں پہ دیش سے پہلے ہی کووڈ سے پہلے ہی ایک سال بھر کا لاک ڈاؤن لگایا. اس کے بعد لاک ڈاؤن لگا, پھر ہماری ہارٹیکلچرل انڈسٹری کے ساتھ کیا ہوا, یہاں کے نوجوانوں کی نوکری کے ساتھ کیا ہوا, ہمارے جو بزنسز ہیں ان کا کیا ہوا, یہاں پہ ہم لوگ ایک کنسٹرکشن بزنس تھا اس کا کیا ہوا, سارے بزنسز تو ختم کر دیے. دے لٹرلی ہیو کیپیچولیٹڈ اس. اور اس کے بعد اب یہ چاہتے ہیں کہ پراپرٹی ٹیکس لگائیں. کیا کسی بھی طریقے ٹیکس کشمیری اس ٹائم برداشت کر سکتا ہے؟ میں آپ سے آپ لوگوں سے ہی میں پوچھ سکتا ہوں. کیا میں آپ لوگوں میں یہاں پہ ساری عوام سے پوچھتا ہوں, کیا کشمیری اس ٹائم کوئی بھی ٹیکس برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو کیسے ہمیں یہ نئے ٹیکس لگا رہے ہیں, کبھی کلچر کے نام پہ کہیں کسی کے نام پہ ہم کو تنگ کیا جا رہا ہے, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اینڈ وی اسٹرانگلی پروٹیسٹ اگینسٹ اٹ.
اس بیچ راجنیتک دلوں جس میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور نیشنل کانفرنس شامل ہیں نے کہا ہے کہ بھارت سرکار نے یہاں پر الجی کو بٹھا رکھا ہے اور آئے دیوس نئے قانون سامنے لائے جا رہے ہیں جس کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو تنگ کرنا ہے. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے پروکتا نے کہا کہ ہم نے بار بار نئی دہلی کو یہ سمجھانے کا پریاس کیا کہ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے, پرنتو وہ ہمیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہم ایک غلام قوم ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم بھارت کے ناگرک ہوتے تو ہمیں دل سے لگایا جاتا اور ہم پر ایسے قانون نہیں لاگو کیے جاتے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھاری سنکھیا میں بھارتی سرکشا بل پہلے ہی یہاں ہے, اب ایسے قانون لاگو کیے جا رہے ہیں جس سے عام ناگرکوں کو پریشانی ہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی ادھیکشتا والی گپکار الائنس نے کہا ہے کہ وہ ان نرنئے کو ویرودھ کریں گے اور اس کے ویرودھ میں ایک ابھیان بھی چلائیں گے. سپت محمد حسن, ریڈیو تہران, سری نگر.
اور اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا کارکرم سماپت ہوتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز. شوتو, امام زین العابدین علیہ السلام کے جنم دیوس کے شبھ اوسر پر اب پیش ہمارا وشیش کارکرم.
دوستو, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے شبھ جنم دیوس کے اوسر پر وشیش کارکرم کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور اختر رضوی کا سلام سویکار کیجیے.
امام زین العابدین علیہ السلام کا جنم 5 شعبان سن 38 ہجری قمری میں ہوا تھا. انہوں نے پوتر نگر مدینہ میں آنکھ کھولی. ان کے پتا کا نام امام حسین اور ماتا کا نام شہربانو تھا. امام زین العابدین یا امام سجاد کا نام علی تھا, کنتو ادھک اپاسنا اور تپسیا کے کارن انہیں زین العابدین کے نام سے خیاتی ملی, جس کا ارتھ ہوتا ہے اپاسنا کی شوبھا. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ ایشور کی اپاسنا میں لین ہو جاتے تھے تو ان کا سارا دھیان ایشور کی ہی ہور ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ جس سمے نماز پڑھنے کے ادیش سے امام سجاد وضو کے لیے جاتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا. جب ان سے اس کا کارن پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم کو نہیں پتا کہ وضو کر کے انسان کس کی سیوا میں اپستھت ہونے جا رہا ہے.
اپنے پتا امام سجاد کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے پتا جب بھی ایشور کی کسی وبھوتی کا الیکھ کرتے تھے تو پہلے ایشور کے سامنے نتمستک ہوتے تھے. آپ کے تیجسوی مکھ پر سجدے کا نشان صاف دکھائی دیتا تھا. امام زین العابدین کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہنا ہے کہ ان کے کال میں آسمان کے نیچے ان جیسا کوئی نہیں تھا. انہوں نے اپنے پورے جیون میں کبھی بھی حرام نہیں کھایا. امام سجاد نے حرام کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا. انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ایشور کی پرشنسا کے لیے کیا. تو دوستو, ایک بار پھر ہم آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام کے شبھ جنم دیوس پر بدھائی دیتے ہیں.
दोस्तों, बचपन में ही इमाम जैनुल आबिदीन की माता का स्वर्गवास हो गया था। उन्होंने अपने जीवन के 2 वर्ष अपने दादा हजरत अली अलैहिस्सलाम के सत्ताकाल का समय देखा था। वे अपने चाचा इमाम हसन से बहुत प्यार करते थे। वे अपने चाचा इमाम हसन की सेवा में उपस्थित होकर अध्यात्म की शिक्षा हासिल करते थे। जब इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की आयु 12 वर्ष की थी, उस समय उनके पिता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत का काल आरंभ हुआ था। सन 61 हिजरी कमरी से इमाम सज्जाद की इमामत या ईश्वरीय मार्गदर्शन का काल आरंभ हुआ।
इमाम जैनुल आबिदीन ने अपना जीवन इस्लाम के बहुत ही अंधकारमय काल में व्यतीत किया। यही वो काल था जिसमें इमाम हुसैन जैसे महान व्यक्ति को उनके परिजनों के साथ कर्बला में केवल इसलिए शहीद कर दिया गया क्योंकि वे समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करके उसमें सुधार करना चाहते थे। यही वो दौर था जिसमें यजीद के सैनिकों ने पवित्र काबे पर मिनजनीक से पत्थर बरसाए थे। उस काल में सरकारी खजाने का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा था। शासक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस्लामी शिक्षाओं में फेर बदल किया जा रहा था। शासकों को खुश करने के लिए उसकी इच्छा अनुसार धर्म की व्याख्या की जाती थी।
इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के काल में शासकों का पूरा प्रयास यह रहता था कि मुसलमानों को इस्लाम की वास्तविक शिक्षाओं से दूर रखा जाए और उनको उनके रीति रिवाजों और परंपराओं में ही उलझा दिया जाए। ऐसे अंधकारमय काल में इमाम जैनुल आबिदीन जहां एक और वास्तविक इस्लाम की रक्षा के लिए प्रयासरत थे, वहीं पर मुसलमानों के कल्याण के लिए एक केंद्र की स्थापना भी करना चाहते थे। उस काल की विषम परिस्थितियों में इमाम सज्जाद ने दुआओं और उपदेशों के माध्यम से समाज सुधार का काम शुरू किया।
उन्होंने दुआओं और उपदेशों के रूप में इस्लामी शिक्षाओं का प्रसार किया। हालांकि तत्कालीन शासकों का यह प्रयास रहता था कि लोगों को इमाम से दूर रखा जाए और वे उनकी गतिविधियों पर पूरी तरह से नज़र रखते थे। इसके बावजूद इमाम सज्जाद अपने प्रयासों से पीछे नहीं हटे बल्कि अपने मिशन को उन्होंने जारी रखा क्योंकि शासक उनके प्रति बहुत संवेदनशील रहते थे। इसलिए इमाम ने उपदेशों के माध्यम से लोगों को सही बात बताने के प्रयास किए।
दोस्तों, हज़रत इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इमामत का काल ऐसे समय में शुरू हुआ कि जब उनके पिता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके 72 साथियों के साथ शहीद कर दिया गया था। इस बेहद मुश्किल और थका देने वाले दौर में इमाम सज्जाद ने यजीद और बनी उमैया के जुल्मों और जुर्मों को उजागर करने का बीड़ा उठाया और इस काम को बखूबी अंजाम दिया।
कूफा, शाम और मदीना में इमाम के ऐतिहासिक भाषणों ने लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। एक रिवायत में कहा गया है कि इन भाषणों के बाद सीरिया के लोग इमाम की बातों से बहुत प्रभावित हुए और रोने लगे और कुछ लोगों ने विरोध भी शुरू कर दिया और अंत में यजीद को पैगंबर इस्लाम के परिजनों के प्रति अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया गया। सीरिया की जनता का यजीद पर दबाव इस हद तक बढ़ गया कि उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हत्या के लिए इब्ने जियाद को दोषी ठहराया और कहा कि अगर मैं होता तो हुसैन को कभी कत्ल न करता।
इमाम सज्जाद के कर्तव्यों में से एक करबला की घटना को जीवित रखना था, जबकि बनी उमैया के शासकों ने तमाम तरह के प्रोपेगेंडों से आशूरा की घटना को लोगों के मन से मिटाने की कोशिश की, लेकिन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन और उनके साथियों के खिलाफ विभिन्न तरीकों से किए गए अपराधों को दुनिया के सामने उजागर किया।
उदाहरण के तौर पर जब भी कोई कसाई किसी भी भेड़ बकरी को ज़िबह करता था तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम रास्ते में खड़े हो जाते थे और कसाई से पूछते थे कि क्या तुमने इस जानवर को ज़िबह करने से पहले पानी दिया था या नहीं। कसाई का जवाब कुछ भी हो लेकिन इमाम के आंसू बहने लगते थे और वो कहते थे कि हाय, मेरे पिता को 3 दिन का भूखा پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ اس طرح کی انیک گھٹناؤں کے سمے امام ہمیشہ کربلا، اپنے پتا اور ان کے 72 ساتھیوں کو ضرور یاد کرتے تھے تاکہ لوگوں کے من میں کربلا کی ہردے ودارک گھٹنا باقی رہے۔
دوستوں، سبھی نبیوں اور معصوم اماموں کا سب سے مہتوپورن لکش نیائے، سرکشا، آرتھک سمردھی، نیتکتا کے پرچار اور اچھے گڑوں کے پرسار کے لیے ایشوریہ سرکار کی ستھاپنا کرنا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام کے دور میں پھیلی ہوئی برائیوں کے کارن اسلامی سرکار استھاپت کرنا سمبھو نہیں تھا، اسی لیے امام نے اپنے سبھی پریاسوں کا اپیوگ ایک دیرگھ کالک اسلامی سرکار کی ستھاپنا کی نیو رکھنے کے لیے کیا تھا۔ ایک اسلامی سرکار کے گٹھن کے لیے بودھک اور مانسک پشٹ بھومی کسی بھی چیز کی تلنا میں ادھک آوشک اور مہتوپورن ہے، اور اس سمے اسلامی دنیا میں موجود استھتیوں میں یہ مانسک اور بودھک پشٹ بھومی کچھ ایسی تھی جس کی وجہ سے یہ کئی ورشوں تک معاملہ کھینچتا چلا گیا۔
گمبھیر گھٹن کے ماحول میں امام سجاد نے لوگوں کو دھرم کی سچائی اور شکشاؤں سے پریچت کرانے اور اسلامی دنیا میں کرانتی لانے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا۔ ان سبھی باتوں کے درشٹیگت امام نے دعاؤں کے مادھیم سے لوگوں کا مارگدرشن آرمبھ کیا۔ انہوں نے دعاؤں کے مادھیم سے لوگوں کو سندیش دینے کا کام آرمبھ کیا۔ سنگھرش اور پرچار کی امام سجاد علیہ السلام کی ایک شیلی دعا تھی۔
امام سجاد علیہ السلام نے دعا کے پریپریکش میں بہت سے اسلامی گیانوں اور وشیوں کو بیان کیا اور ان سب کو صحیفہ سجادیہ نام کی کتاب میں اکترت کیا گیا۔ اس کتاب کو اہل بیت کی انجیل اور آل محمد کی توریت کہا جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اپنی دعاؤں کے مادھیم سے لوگوں کے من میں اسلامی جیون شیلی کے کارنوں کو اتپن کرتے ہیں۔ امام نے دعا کو مہان و سرو سمرتھ ایشور کا سامپیہ پراپت کرنے کا سب سے بہترین اور اتم سادھن بتایا، وہ بھی اس کال میں جب لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ روچک بات یہ ہے کہ امام جگہ جگہ پر امامت اور اہل بیت کی ستیتا کو بھی بیان کرتے ہیں۔
امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کے سنگرہ کا نام صحیفہ سجادیہ ہے۔ اس میں مکارم الاخلاق نامک دعا ہے۔ اس دعا میں امام ایشور سے نیتک گنوں سے سسجت ہونے اور انیتکتا سے دوری کی دعا کرتے ہیں۔ ادوتیہ وشے وستو کی درشٹی سے یہ دعا بہت سندر ہے۔ امام اس دعا میں مانویہ سدگنوں اور نیتکتا کی سندر سوچی کا الیکھ کرتے ہیں۔ اس دعا میں مہتوپورن شکشائیں ہیں اور انسان اس میں بیان کیے گئے وشیوں کے بارے میں جتنا گہرائی سے سوچتا ہے اسے اتنا ہی گیان پراپت ہوتا ہے، اور جتنا اس کے سدھانتوں پر عمل کرتا ہے اتنا ہی اسے ایشوریہ کلیان پراپت ہوتا ہے۔
صحیفہ سجادیہ کی ایک انیہ مہتوپورن دعا 15ویں دعا ہے۔ ان دعاؤں میں وشیش پیرنا ایوم پروتساہن ہے۔ اس دعا کی وشیشتا یہ ہے کہ ہر انسان اپنی مانسک ایوم آتمک وشیشتاؤں اور سمست انسان اپنی وبھن مانسک ایوم آتمک پرستھتیوں کے باوجود اپنی دعا کو اس میں پراپت کر سکتے ہیں اور ایشور کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ سکتے ہیں۔ 15ویں دعا میں توبہ کرنے والوں کی دعا، آبھار ویکت کرنے والوں کی دعا، بھیبھیت لوگوں کی دعا، واپس ہونے والوں کی دعا اور آکرشت ہونے والوں کی دعائیں اتیادی شامل ہیں۔ تو دوستوں، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنت ایران کی آواز۔ شروتاؤ، اب پرست ہے ہماری سبھا کا انتم کارکرم اچھی عادتیں۔
اچھی عادتیں۔
دوستوں، کارکرم اچھی عادتیں لے کر آپ کی سیوا میں اپستھ ہیں سواتی اور قائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو، پچھلے کارکرم میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جس طرح سے جیون ساتھی کی تلنا دوسروں کے جیون ساتھی سے نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح سے بچوں کی تلنا بھی دوسرے بچوں سے نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر ماں باپ، ادھیاپک اور رشتے دار بچوں کی تلنا دوسرے بچوں سے کرنے لگتے ہیں، اس پرکار سے وہ انجانے میں بچوں کے آتم وشواس کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ بچوں کی ایک دوسرے سے تلنا کرنے سے ان کا وکاس پربھاوت ہوتا ہے اور ان کا اتساہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر دوسروں سے بچوں کی تلنا کرنا ایک عادت بن گئی ہے تو بچوں کا بچپن اتساہ اور جوش سے خالی ہو جائے گا۔
کچھ ماں باپ یہ سوچ کر اپنے بچوں کی دوسرے بچوں سے تلنا کرتے ہیں کہ اگر وہ سفل بچوں سے اپنے بچوں کی تلنا کریں گے تو ان کے بچے بھی اس سے پریرت ہوں گے اور سفل بچوں سے سیکھ لے کر خود بھی آگے بڑھیں گے۔ حالانکہ جیسا کہ وہ سوچتے ہیں، نتیجہ اس کے بالکل وپریت ہوتا ہے۔ اس طرح سے نہ کیول وہ اپنے بچوں سے دور ہو جاتے ہیں بلکہ وہ ان کی رچناتمک کشمتا کو بھی کچل دیتے ہیں اور ان کے اندر ان بچوں کے پرتی نفرت بھر دیتے ہیں جن سے ان کی تلنا کی جا رہی ہوتی ہے۔
جب بچوں کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ان کے اندر کافی خامیاں ہیں تو وہ نہ صرف تلنا کرنے والے کے پرتی کٹو اور اداس محسوس ہونے لگتے ہیں بلکہ اس بچے کے پرتی بھی کرودھت ہو جاتے ہیں جس سے اس کی تلنا کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے بچے کی دوسروں سے سکاراتمک طریقے سے بھی تلنا نہ کریں۔
اس کے علاوہ بچوں سے بہت ادھک اپیکشا کرنا اور ان کے دوستوں اور ساتھیوں سے تلنا کرنا بچوں کو جھوٹ بولنے کے لیے پریرت کرتا ہے۔ جن ماں باپ کو اپنے بچوں سے اتیادھک اپیکشائیں ہوتی ہیں اور وہ ان پر دباؤ ڈالتے ہیں، دراصل وہ بچوں کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ماں باپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ کسی بھی عمر میں بچوں کی تلنا کرنا ایک غلط بات ہے جس سے بچے کی اپنی پرتیبھا کو نقصان پہنچتا ہے اور اس میں نراشا پیدا ہوتی ہے۔ بچہ تلنا سے بچنے کے لیے اپنے ماں باپ سے ہی دوری بنانے لگتا ہے جس کے خطرناک پرینام نکل سکتے ہیں۔
ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی آپس میں تلنا کرنے یا ان کے دوستوں سے تلنا کرنے سے ان کے بیچ ایک گہری کھائی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کھائی سے ان میں ایرشیا اور آکروش کی بھاونا پیدا ہوتی ہے جس سے بھوشیہ میں کوئی بھی اپریہ گھٹنا گھٹ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جن بچوں کی ہمیشہ تلنا کی جاتی ہے ان میں ہین بھاونا پیدا ہوتی ہے اور وہ خود کو کمتر اور بیکار سمجھنے لگتے ہیں، ان میں نئی چیز سیکھنے کا اتساہ بھی کم ہو جاتا ہے۔
تلنا سے بچوں میں تناؤ پیدا ہوتا ہے کیونکہ بچوں کی لگاتار تلنا سے انہیں اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں اپنے کندھوں پر بھاری بوجھ محسوس ہوتا ہے اور وہ اسہج محسوس کرتے ہیں۔ کچھ ماں باپ کا ماننا ہوتا ہے کہ دوسرے بچوں کی اپنے بچوں کے سامنے اچھائیاں بیان کرنے سے وہ بھی اپنے اندر سدھار لانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک غلط دھارنا ہے۔ آپ کو یہ جان کر آشچر ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کے دماغ میں ان تلناؤں کی ٹیس ہمیشہ کے لیے گھر کر سکتی ہے۔
دوستو، اس کارکرم میں ہم جہاں پر بری عادتوں اور اس سے بچنے کی چرچا کر رہے ہیں، وہیں پر اچھی عادتوں کو اپنانے کے طریقوں کو بھی بتا رہے ہیں۔ اچھی عادتیں اپنانے کے لیے ایک مہتوپورن وشے خود کو پہچاننا ہے تاکہ انسان اپنی شکتی اور کمزوری، روچی اور ڈر تتھا اچھاؤں کو پہچان کر انتتا جیون کے اپنے ادیش کو پہچان سکے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی بری سوچ اور بری عادتوں کو پہچاننا ہوگا اور اس میں سدھار کرنا ہوگا۔
आत्मज्ञान या सेल्फ डिस्कवरी खुद को पहचानने का एक कौशल है जो व्यक्तिगत कौशल के विकास का सूत्रधार है। जिंदगी के विभिन्न आयामों जैसे मानवीय, भावनात्मक, पारिवारिक, पेशेवर और सामाजिक संबंधों में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्म जागरूकता बहुत जरूरी है। विभिन्न संस्कृतियों और राष्ट्रों ने आत्मज्ञान को जीवन में सफलता का मार्ग करार दिया है। इतिहास में हमेशा ही इसके महत्व पर काफी बल दिया गया है। इसके अलावा सेल्फ डिस्कवरी आजकल सॉफ्ट स्किल के मूल्य विषयों में से एक है और इसे कैरियर की सफलता के लिए प्रभावी और निर्विवाद कारकों में से एक माना जाता है।
अक्सर लोग इस भ्रम में रहते हैं कि वे खुद को पहचानते हैं, लेकिन जब उनसे उनके उद्देश्य, जीवन के मूल्यों और इसी तरह की चीजों के बारे में पूछा जाता है तो वे इसका कोई उचित जवाब नहीं दे पाते। विश्वास, रुचियां, भावनाएं, ज़रूरतें और कई अन्य चीज़ें जीवन बदल देती हैं, लेकिन क्या ये बदलाव हमेशा लोगों को खुश करते हैं और उनके विकास का कारण बनते हैं? हम अपने जीवन को प्रगति और खुशी की ओर कैसे ले जा सकते हैं?
आत्मज्ञान ही जीवन का आधार है। आत्मज्ञान के जरिए हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सुधार कर सकते हैं। जब हमें इस बात का एहसास हो जाए कि हमारे व्यवहार और हमारी भावनाओं पर हमारे विश्वासों का कितना प्रभाव पड़ता है तो आत्मज्ञान का महत्व बढ़ जाता है। दरअसल दुनिया और लोगों के बारे में हमारी भावनाएं हमारे विशेष दृष्टिकोण और विश्वास पर आधारित होती है। उदाहरण स्वरूप, जब कोई झूठ बोलता है तो हम नाराज हो जाते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है। दिलचस्प बात यह है कि हम खुद अपने बारे में भी इन मूल्यों के आधार पर फैसला करते हैं। इन मूल्यों के मद्देनजर ही हम अपने ऊपर गर्व करते हैं या खुद से संतुष्ट होते हैं। कभी कभी हम अपने बारे में शर्म महसूस करते हैं या खुद को दोष देते हैं। ये स्पष्ट है कि हमारी भावनाएं हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में एक अहम भूमिका निभाती है। इंसान का सोचने का ढंग उसके भविष्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यहाँ ये सवाल उठता है कि आत्मज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? दुर्भाग्य से अक्सर लोग कामों को दोहराते रहते हैं और हमेशा एक जैसे ही काम करते रहते हैं, हालांकि उन्हें ये पता नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वे हर चीज को लेकर शिकायत करने लगते हैं। ये सही है कि हर काम को दोहराना व्यर्थ नहीं है, बल्कि कुछ कामों को दोहराना प्रगति का कारण भी बन सकता है, जैसे कोई हर दिन व्यायाम करे। लेकिन हर दिन ऐसे काम करना जो व्यर्थ होते हैं और उनका काम करने वाले और उसके परिवार के भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं होता है, तो ऐसे कामों को दोहराना कोई सही बात नहीं है।
आत्मज्ञान का एक दूसरा लाभ यह है कि हमें पता चलता है कि हमारी क्या विशेषताएं हैं और हमें किन चीजों की जरूरत है। इससे पहले हमें अपनी गलतियां और खामियों को दूर करने में मदद भी मिलती है। उदाहरण स्वरूप, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लोग बिना यह जाने कि उनकी क्या जरूरत है और उन्हें क्या चाहिए, विभिन्न प्रकार के विषयों की शिक्षा प्राप्त करने लगते हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। ये सच है कि सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए कदम आगे बढ़ाने की भी जरूरत होती है। लेकिन उस व्यक्ति के बीच की जो खुद को जानता है और अपनी प्रतिभाओं से वाकिफ है और कुछ परीक्षणों और गलतियों के बाद सफलता की राह पर चल पड़ता है, और उस व्यक्ति के बीच अंतर है जो वर्षों से गलतियां कर रहा है और उसके बावजूद उसे पता नहीं है कि उसे क्या चाहिए और कैसे आगे बढ़ना है। इसीलिए समय, ऊर्जा और पैसा बर्बाद नहीं करना आत्मज्ञान का एक और लाभ है।
जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार को पहचान लेता है तो वो कठिन परिस्थितियों में भी सही कदम उठाता है। हमारा जीवन क्योंकि छोटे छोटे फैसलों से बनता है, इसलिए हम एक बेहतर जीवन का अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब आप स्वयं को जानते हों और अपने जीवन और उसके मिशन से वाकिफ हों तो आप उन प्रस्तावों और सुझावों के बारे में सही फैसला कर पाएंगे जो आपको दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपके लिए फैसला करना आसान हो जाता है।
आखिरी बात यह है कि जब आप अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को पहचानते हैं और खुद को जानते हैं तो आप वही करेंगे जो आपको पसंद होगा और आपके लिए सही होगा। पूरी जानकारी के साथ कार्य करने में आपको जो आनंद मिलता है वह आप किसी अन्य कार्य में अनुभव नहीं कर सकते। आपने किसी न किसी मशहूर व्यक्ति की जीवनी पढ़ी होगी जिसमें उसकी ध्यान केंद्रित करने की प्रतिभा और व्यस्त होने की स्थिति में बाकी दुनिया को भूल जाने की क्षमता का जिक्र जरूर पड़ा होगा। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। सिपाही पासदारन के कमांडर ने कहा है कि दुश्मन केवल ताकत की भाषा समझता है और सुपरसोनिक मिसाइलों में विस्तार किया जाएगा। जर्मन चांसलर 2 दिवसीय यात्रा पर आज भारत पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात और बातचीत हुई है। सोनिया गांधी ने कहा है कि नफरत की आग भड़काई और विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज। शुभ रात्रि।